ठीक है, या क्या नियम है? जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो पिछले सोमवार को श्लोक संख्या 5 तक हुआ था, फिर आज 6, 7, 8, 9 एक साथ बोलेंगे और 6, 7, 8 मैं पढ़ूंगा, इनका तात्पर्य नहीं है। ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद तीन अंग प्रभा अंश स्वरूप तीन विधेय चिन्ह निर्विशेष ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान ये तीन उद्देश्य हैं और दीप्तिमान तेज अंश स्वरूप तथा आदि स्वरूप उनके तत्त्व विधेय हैं। तो यहाँ पर कविराज महाराज ये समझाना चाहते हैं पिछले श्लोक श्लोक संख्या जो 5 है उसको ही कई प्यारों में समझा रहे हैं। तो वो जो श्लोक संख्या 5 जो पिछले सोमवार को लिखा गया था उसका ये मतलब था कि जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के शरीर का तेज है और जो परमात्मा है वो भगवान के अंश हैं और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं जो परम सत्य हैं, अन्य कोई सत्य न उनसे बड़ा है न उनके समान है। तो इस प्यार में वो समझा रहे हैं कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये तीन तो उद्देश्य हैं और ये और दीप्तिमान तेज अंश स्वरूप तथा आदि स्वरूप ये विधेय है, मतलब उनकी जो विशेषता है वर्णन है वो ये है। ब्रह्म का वर्णन किया गया है कैसे? भगवान का हाँ दीप्तिमान तेज है, और परमात्मा का वर्णन हुआ है कैसे? भगवान के अंश, और श्री कृष्ण साक्षात भगवान के आदि स्वरूप है। अनुवाद आगे पाछे विधेय स्थापन सही अर्थ कही सुन शास्त्र विवरण। विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है। अब मैं इस श्लोक का अर्थ शास्त्रों के अनुसार बतलाऊंगा। विधेय का मतलब वर्णन और उद्देश्य का मतलब सबसे पहला जो विषय है ना। तो ब्रह्म है भगवान का अंश है, परमात्मा ब्रह्म भगवान के शरीर का प्रकाश है, परमात्मा भगवान के अंश हैं और श्री कृष्ण भगवान के आदि स्वरूप हैं, है ना। तो वो विधेय का मतलब वर्णन। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद परम महत्व। भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व हैं, वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद हैं, वे परम ब्रह्म हैं। अब गाइए। नंद सुत बलि जारे भागवत गाये सही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। नंद सुत बलि जारे भागवत गाये सही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। नंद सुत बलि जारे भागवत गाये सही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। इसमें एक उच्चारण का नियम बताया गया है कि या में जो बिंदु लगी है तो उसको जा बोलना है, तो यारे को जारे बोलना है। बोलिए। जिसे श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाता है, वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की साहित्य में सक्षम रचना के सिद्धांतों के अनुसार विधेय के पूर्व उद्देश्य आना चाहिए। तो जो हमने पहले बताया विधेय का मतलब वर्णन, तो वर्णन के पहले उद्देश्य होना चाहिए कि आप किसका वर्णन कर रहे हैं, है कि नहीं। जैसे कि आप कोई प्रवचन दे रहे हैं तो पहले पता होना चाहिए कि आप किस विषय में बोल रहे हैं। नहीं तो होता क्या है कि हम प्रवचन दे रहे हैं और हमें खुद ही पता नहीं कि हम क्या वर्णन कर रहे हैं। तो पहले लक्ष्य होना चाहिए हमारा कि हमें क्या बोलना है कि नहीं। नहीं तो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, और पता नहीं चलता कि कहाँ से किस बात से फिर दूसरी बात में आ गए, कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि साहित्य की सक्षम रचना के सिद्धांत के अनुसार विधेय के पूर्व उद्देश्य आना चाहिए। कोई भी साहित्य लिखा जाता है तो जो सक्षम रचना होती है तो उसमें निश्चित होता है पहले कि विषय क्या है ना। आगे वैदिक साहित्य में प्रायः ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान का उल्लेख होता है, अतएव ये तीनों शब्द दिव्य ज्ञान के उद्देश्य कहलाते हैं। तो इनका वर्णन हुआ है ना। तो ये समझो कि वैदिक साहित्य के तीन ही उद्देश्य हैं, क्या है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। किंतु यह बहुविदित नहीं है कि जिस निर्विशिष्ट ब्रह्म तक पहुंचा जाता है वह श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर का तेज है। ये सबको पता नहीं है, इसलिए कृष्णदास कविराज इस विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो निर्विशिष्ट ब्रह्म जिसको कि परम सत्य मानते हैं कौन, ज्ञानी लोग, लेकिन वास्तव में वो जो है भगवान के शरीर का प्रकाश है। इस बात को सब लोग समझते नहीं, ना ही व्यापक रूप से यह भी ज्ञात है कि परमात्मा उन साक्षात भगवान चैतन्य के अंश स्वरूप हैं। तो यह भी पता नहीं सबको, परमात्मा जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं या प्रत्येक परमाणु के अंदर विराजमान हैं, तो जो परमात्मावादी हैं, योगी हैं, तो उसी को ही परम सत्य मानते हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं है कि वास्तव में वो भी परमात्मा के अंश हैं। मतलब परम सत्य के अंतिम रूप ना तो ब्रह्म है और ना परमात्मा, अतएव चैतन्य के तेज के रूप में ब्रह्म, उनके अंश के रूप में परमात्मा, और श्री चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न रूप में भगवान के जो वर्णन है उनकी पुष्टि प्रामाणिक वैदिक साहित्य के साक्ष्य पर होने चाहिए। तो यही चीजें हैं जो कि कृष्णदास कविराज आगे के श्लोक में सिद्ध करते हैं। विभिन्न शास्त्रीय प्रमाणों से कृष्णदास कविराज सिद्ध करते हैं। लेखक सर्वप्रथम इसकी पुष्टि करना चाहता है कि वेदों का सार विष्णु तत्व अर्थात परम सत्य सर्वव्यापक ईश्वर विष्णु है। वेदों का सार ये है, ब्रह्म और परमात्मा नहीं है, वेदों का सार विष्णु है, ईश्वर। विष्णु तत्व की विभिन्न कोटियां हैं जिनमें सर्वोच्च परम विष्णु तत्व भगवान कृष्ण है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में तथा संपूर्ण वैदिक साहित्य में हुई है। अब इसको जो है आज की कक्षा में हम गर्ग संहिता से सुनाएंगे कैसे वर्णन किया, बड़ा स्पष्ट वर्णन हुआ है गर्ग संहिता में कि जब सब देवता लोग भगवान विष्णु के साथ जाते हैं तो कैसे गोलोक धाम में पहुंचते हैं और गोलोक धाम में भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं, और जितने भी भगवत स्वरूप हैं वो सब कृष्ण के शरीर में लीन होते हैं जब कृष्ण आते हैं। तो जो प्रभुपाद ने कहा है कि जितने भी अवतार हैं भगवान के सब कृष्ण के शरीर में होते हैं जब कृष्ण आते हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट गर्ग संहिता में वर्णन है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण को ही नंदसुत अर्थात राजा नंद का पुत्र कहा गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नंदसुत ही फिर से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि वैदिक साहित्य का निर्णय है कि भगवान कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं। लेखक इसी को सिद्ध करेगा। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण समस्त तत्वों के यानी सत्यों के अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के उद्गम है, तो इसके समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही उन समस्त तत्वों के भी उद्गम है। एक ही परम सत्य जो विभिन्न अनुभूति वाले जिज्ञासुओं के समक्ष प्रकट होता है ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं तात्पर्य में कि कृष्णदास कविराज इसमें ज्यादा प्रकाश डाल रहे हैं, इस बात पर ज्यादा प्रकाश डाल रहे हैं कि कृष्ण सब अवतारों के उद्गम है। पहला तो विषय यह है कि ब्रह्म परमात्मा भगवान इन तीनों में भगवान ही सर्वोच्च परम सत्य है। फिर दूसरी बात यह है कि जितने भी भगवान के स्वरूप हैं उनमें श्री कृष्ण ही सर्वोच्च है। और तीसरी बात क्या है कि जो श्री कृष्ण वही चैतन्य महाप्रभु है। कृष्णदास कविराज इन तीन सत्यों की स्थापना करना चाहते हैं। आगे के जितने भी उदाहरण देंगे वो शास्त्रों से उदाहरण देंगे तो उनमें तीन बातें स्थापित करना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो कृष्णदास कविराज ज्यादा अपनी शक्ति लगा रहे हैं इस बात पर कि कृष्ण को सिद्ध करना चाहते हैं कि सब अवतारों के स्रोत हैं। तो फिर कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए इसको स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आगे चल करके बहुत से साक्ष्य हैं कि श्री कृष्ण ही साक्षात चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। लेकिन मुख्य विषय जो है कृष्णदास कविराज का यह है कि कृष्ण की स्थापना करना है कि वे ही भगवान के सर्वोच्च रूप हैं। अब इसमें बहुत विस्तार से वर्णन है भगवान कृष्ण के जन्म का। श्रीमद् भागवत में ये बताया गया है कि जितने देवता हैं वो सब ब्रह्मा जी की सभा में जब उपस्थित थे तो पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की सभा में आई और सब देवताओं के सामने उसने अपना दुख निवेदन किया। इसके बाद श्रीमद् भागवत क्या कहता है कि पृथ्वी देवी सब देवता और ब्रह्मा जी मिल करके शिव जी के पास आए और शिव जी को भी साथ लेकर गए। यानी सब देवतागण हैं, पृथ्वी देवी हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी मिलकर के कहां आए, क्षीर सागर के तट पर आए। और क्षीर सागर के तट पर उन्होंने पुरुष सूक्त के द्वारा प्रार्थना की तो भगवान विष्णु स्वयं प्रकट नहीं हुए, जबकि और कई स्थानों पर श्रीमद् भागवत में यह वर्णन हुआ है कि भगवान विष्णु प्रकट हुए। जैसे आठवें स्कंद में आता है कि ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के जब आए क्षीर सागर तट पर तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने साक्षात बातचीत की कि तुम्हें क्या करना है और मैं क्या करूँगा, पूरी योजना बनाई और बताई देवताओं को क्या करना है और भगवान क्या करेंगे वो सब। लेकिन इस घटना में विष्णु जी जो क्षीर सागर के विष्णु जी हैं वो नहीं आए और सुखदेव गोस्वामी ने इस विषय को जो है छिपा दिया, ज्यादा विस्तार नहीं किया। इसका भी कुछ कारण है कि सुखदेव गोस्वामी ने इस विषय को संक्षिप्त कर दिया और क्या कह दिया कि गिरिम समाधो गगने समीरिताम, कि ब्रह्मा जी को समाधि में जो है आवाज सुनाई दी, समाधि के द्वारा ब्रह्मा जी को संदेश प्राप्त हो गया। वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषः परः, तो वसुदेव के घर में हरे कृष्ण, वसुदेव के घर में साक्षात परम पुरुष भगवान है ना प्रकट होंगे। साक्षात परम पुरुष भगवान मतलब क्षीर सागर के विष्णु नहीं, ये इशारा है कि साक्षात परम पुरुष भगवान वसुदेव के घर में प्रकट होंगे। जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु कुल स्त्रियः, तो उनकी प्रसन्नता के लिए जो देवताओं की स्त्रियां हैं तो वो जन्म लें, तो ये आदेश ब्रह्मा जी को मिला। लेकिन अगर सुखदेव गोस्वामी इतने विस्तार से कृष्ण के जन्म का वर्णन करते जितना विस्तार से गर्ग संहिता में है तो क्या होता कि परीक्षित की आयु समाप्त हो गई होती और कृष्ण के पूरे चरित्र का वर्णन नहीं हो पाता, क्योंकि परीक्षा की आयु केवल 7 दिन की थी और उसमें भी श्रीमद् भागवत 9 स्कंद तक सुनाने से 3 दिन या 4 दिन तो निकल गए, है कि नहीं? तो 3-4 दिन में परीक्षित महाराज की प्रार्थना थी कि भगवान के पूरे चरित्र बताइए। तो भगवान के सब चरित्रों को बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने बहुत से रहस्य नहीं बताए और संकेत कर दिया, उन रहस्यों का संकेत कर दिया, और उन संकेतों को जो है पकड़ करके जीव गोस्वामी जो है उनको और विस्तार करते हैं, उसका रहस्य उद्धारण करते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी के संकेत भी कम नहीं है, उन संकेतों से भी बहुत गहरे बहुत गहराई में जाकर के जीव गोस्वामी उन सब रहस्यों को निकालते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने संकेत इसीलिए दिए क्योंकि वो जो है परीक्षित की जितनी आयु है, 2-3 दिन जो बचे हुए हैं उसमें कृष्ण के पूरे चरित्र का वर्णन करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ गर्ग संहिता की बात है, नारद जी बहुलाश्व राजा को जब सुनाते हैं कृष्ण का चरित्र, तो पूरी फुर्सत के साथ राजा बहुलाश्व सुनते हैं और ऐसा कोई भय नहीं है, कोई समय की सीमा नहीं है, समय की कमी नहीं है, इसलिए कृष्ण का जो चरित्र है वो बहुत विस्तार से गर्ग संहिता में है। इसमें बताया गया है, राजा बहुलाश्व पूछते हैं कि हे मुनिवर, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, ये मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी बोले, हे राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंशांश अंश आवेश कला पूर्ण और परिपूर्णतम, ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। समझ रहे हैं? अंशांश अंश आवेश कला पूर्ण और परिपूर्णतम, 6 प्रकार के। मरीच आदि अंशांशावतार, ब्रह्म आदि अंशावतार, कपिल एवं कूर्म कलावतार और परशुराम आदि आवेशावतार कहे गए हैं। नृसिंह राम श्वेताधि श्वेत द्वीपाधिपति हरि वैकुंठ यज्ञ और नर नारायण, ये पूर्ण अवतार हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं। परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्ण भगवान स्वयं असंख्य ब्रह्मांड पति गोलोके धाम निराजते। जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं वे ब्रह्म आदि अंश हैं। जो उन अंशों के कार्यभार में हाथ बटाते हैं वे अंशांशावतार के नाम से विख्यात हैं। भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण में आविष्ट हो अभीष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं, ऐसे अवतारों को आवेशावतार समझो। जो प्रत्येक युग में प्रकट हो युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करे पुनः अंतर्धान हो जाते हैं, भगवान के उन अवतारों को कलावतार कहा जाता है। जहाँ 4 व्यूह प्रकट हों जैसे श्री राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न एवं वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो एवं जहाँ बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो, भगवान के उस अवतार को पूर्णावतार कहा जाता है। ये पूर्ण अवतार है। जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं, भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष परिपूर्णतम अवतार बताते हैं। यस्मिन् सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ते सुतेजसी तम वदन्ति परे साक्षात परिपूर्णतमः स्वयं। जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही ये साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। पूर्णस्य लक्षणम यत्र यम पश्यन्ति पृथक पृथक भावेनापि जना स्वयं परिपूर्णतमः स्वयं। स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है। कोई समझ नहीं सकता, इतने रहस्य हैं कृष्ण के अवतार के, इतने रहस्य हैं कि एक कार्य से करोड़ों कार्य पूरे किए हैं। कौन जान सकता है। कृष्ण जो है एक कार्य से करोड़ों कार्य संपादन करते हैं, कौन जान सकता है इस रहस्य को, करोड़ों कोटि कार्यम चका रहा, एक एक कार्यार्थम आगते, एक कार्य के लिए आए और करोड़ों कार्य उन्होंने संपन्न किए हैं, ये सब रहस्य है। जो पूर्ण पुराण पुरुष पुरुषोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर हैं, उन साक्षात सदानंदमय कृपा निधि गुणों के भंडार भगवान श्री कृष्णचंद्र की मैं शरण लेता हूं। पूर्ण पुराण पुरुषोत्तमोत्तम परात्परो यः पुरुषः परेश्वरः स्वयं सदानंदमयं कृपाकरं गुणाकरं तं शरणं व्रजाम्यहम्। ये सब बातें कौन बता रहा है? नारद मुनि बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं? राजा बहुलाश से बता रहे हैं। राजा बहुलाश ने पूछा, हे महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतरकर जो भारत वर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये राजा पूछ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि नारद और बहुलाश के बीच में जो संवाद हुआ वो किस समय हुआ? जब भगवान कृष्ण थे कहां पर? द्वारका में थे। हे ब्रह्मन, उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहत गोलोक धाम का वर्णन कीजिए हे महामुने, साथ ही उनके अपरिमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। परिपूर्णतम साक्षात कृष्ण श्री कृष्ण केन हेतुना आगतो भारते खंडे द्वारवत्याम विराजते तस्य गोलोकनाथस्य गोलोकम धाम सुंदरम कर्माण्य परिमेयानि ब्रूहि ब्रह्मन् बृहन् मुने। जब मनुष्य तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फल स्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्णचंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। तो समझ रहे हैं, श्री कृष्ण की जो कथा है वो कैसे मिलती है? 100 जन्मों तक क्या करो? तीर्थ यात्रा और तपस्या करो, तब सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। यदा तीर्थाटनम कुर्वन् छत जन्म तपः परः तदा सत्संगमित्याशु श्री कृष्णं प्राप्नुयान् नरः। तो फिर नारद जी वो बताते हैं। अब देखिए, वहां से मैं शुरू कर रहा हूं कि जब पृथ्वी देवी अपना कष्ट बताती है ब्रह्मा जी की सभा में, बहुत पहले की बात है, दानव दैत्य आसुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय उसका शरीर कांप रहा था, वहां उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधाया और तत्काल समस्त देवताओं तथा शिव जी को साथ लेकर वे भगवान नारायण के वैकुंठ धाम को गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। अब देखो, जो विस्तृत कथा है वो ये है, वो क्या है कि विष्णु जी कह रहे हैं ब्रह्मा और शिव और सब देवताओं से, क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मन, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर अखंड स्वरूप तथा देवातीत हैं, उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिर्वचनीय हैं। कौन कह रहा है? विष्णु जी कह रहे हैं, विष्णु जी कह रहे हैं उनकी लीला अनंत एवं अनिर्वचनीय है, उनकी कृपा के बिना ये कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा, अतः तुम उनके अविनाशी एवं परम उज्ज्वल धाम में शीघ्र जाओ। जो वैकुंठ धाम के विष्णु हैं वो कह रहे हैं कि कृष्ण के धाम में जाओ तुम लोग, क्योंकि वही ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इस कार्य के साथ साथ उनके और भी करोड़ों कार्य हैं। तो वो सब जो है करोड़ों अवतारों में जो कार्य नहीं हुए वो सब कार्य कृष्ण अवतार में होने वाले हैं। ये सब रहस्य विष्णु जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को पता नहीं है, शिव को पता नहीं, किसी को पता नहीं है, विष्णु जानते हैं, विष्णु ही सर्वज्ञ हैं, है ना, इसलिए वो बताते हैं उनके धाम में जाओ। कृष्णम स्वयं विगणितान्यपतिम परेशम साक्षाद अखंड मति देव मति विलीलम कार्यम कदापि न भविष्यति यम विनाहि गच्छासु तस्य विशदम पदमव्ययम् तम। ब्रह्मा जी बोले, अब देखो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी को पता नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है ये मैं नहीं जानता। हरि बोल, महामंत्र प्रभु, हरि बोल। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है ये मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का मुझे दर्शन कराइए। ब्रह्मा जी कहते, हमको पता नहीं, आप ही चलो हमारे साथ वहां पर, है? ना तो हमको रास्ता पता है कि किस रास्ते से जाएं, कहां पर जाएं और कौन है आपके सिवा, तो बताइए। त्वत्तः परम न जानामि परिपूर्णतमं स्वयं यदि योन्यस्तस्य साक्षान् लोकं दर्शयन्नः प्रभो। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्णतम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। मतलब ब्रह्मांड से बाहर निकलना पड़ेगा। विष्णु जी कहते हैं, रास्ता देखो ये है गोलोक धाम का रास्ता। बामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से ब्रह्मांड के सर्वभाग का भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ वह अक्षय नीर से परिपूर्ण था, यानी वही गंगा जी का रास्ता, जिस रास्ते गंगा जी आई कारण समुद्र से, तो वामन भगवान के बाएं पैर के अंगूठे के नाखून से वो रास्ता बन गया निकलने का बाहर। तो ब्रह्म विष्णु जी कहते हैं कि देखो ये रास्ता है, इस रास्ते से निकलो बाहर। सब देवता उसी मार्ग से वहां के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। एक विशेष जलयान था, जलयान समझते हैं, मतलब शिप, पानी का जहाज, एक विशेष पानी का जहाज था जिसमें बैठा करके विष्णु जी ने उन सबको बाहर निकाला, ब्रह्मांड के बाहर निकाला। वहां ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सब ने नीचे की ओर उस ब्रह्मांड को कलिंग बिंब यानी तरबूजा की भांति देखा। जब ब्रह्मांड से बाहर निकले सब के सब तो नीचे देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक तरबूजा की तरह है, पानी में तैर रहा है ब्रह्मांड, समझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। इंद्रायण फल मतलब तरबूजा, तरबूजे की तरह बहुत से ब्रह्मांड तैर रहे हैं। वो कौन सा समुद्र है जिसमें कई ब्रह्मांड तैर रहे हैं, कारण समुद्र है। तो कारण समुद्र में जब आ गए तो सब के सब देखते नीचे, बाप रे ये क्या है, ये ब्रह्मांड, जैसे हवाई जहाज से आप ऊपर जाते हैं तो जमीन छोटी सी दिखाई पड़ती है कि नहीं, जो आदमी है वो चींटी जैसे दिखाई पड़ते हैं, ये कैसे लगते हैं, जो घर हैं वो माचिस की डिब्बियों जैसे दिखाई पड़ते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जब ब्रह्मांड के बाहर निकले सब देवता लोग तो पूरे ब्रह्मांड को जो बताया गया कि 50 करोड़ योजन का विस्तार है ब्रह्मांड का, वो छोटे छोटे कैसे दिखाई पड़ते हैं, तरबूज के समान दिखाई पड़ते हैं, लहरों में लुढ़क रहे हैं, लहरों में लुढ़क रहे हैं ब्रह्मांड। ये देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ, वे चकित हो गए। वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले जिनके चारों ओर दिव्य चहार दीवारी शोभा बढ़ा रही थी और झुंड के झुंड रत्नमय वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमता बढ़ गई थी। रत्न के वृक्ष हैं, रत्नों के मतलब बहुत प्रकाश फैल रहा है, उन पेड़ों से ही प्रकाश फैल रहा है, रत्नों के वृक्ष हैं। वहीं ऊपर देवताओं ने बिरजा नदी का सुंदर तट देखा जिससे बिरजा की तरंगे टकरा रही थीं। वह तट प्रदेश उज्ज्वल रेशमी वस्त्र के समान शुभ्र दिखाई देता था। दिव्य मणि के सोपानों से, मणि के सोपान यानी सीढ़ियां, मणि के सोपानों से अत्यंत उद्भासित हो रहा था, यानी बहुत प्रकाश फैल रहा है, मणियों का प्रकाश फैल रहा है। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे जो अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। बिरजा को पार करके, क्योंकि बिरजा नदी गोलोक धाम के चारों तरफ बह रही है, परीक्षा की समान, परीक्षा के समान वो बह रही है। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधिया गईं, वे उस तेज से पराभूत हो जहां के तहां खड़े रह गए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। अब विष्णु ने आज्ञा दी कि अगर देखना चाहते हो तो क्या करो, प्रणाम करो। उस तेज के अंदर भी अगर तुम देखना चाहते हो तो प्रणाम करना पड़ेगा, और प्रणाम नहीं करोगे तो उस तेज के अंदर तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देने वाला। जैसे भगवान कृष्ण जब सभा में थे, कौरवों की सभा में थे, संधि प्रस्ताव लेकर के आए थे, और दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया था, तो कृष्ण ने अपना इतना तेज प्रकट किया कि दुर्योधन और दुशासन और अश्वत्थामा और कर्ण ये लोग जो है ना कृष्ण को देख नहीं सकते थे, उनकी आंखें चौंधिया गई। जब देख नहीं पाते तो बंदी कैसे बनाओगे, कृष्ण को बंदी बनाने की चेष्टा कर रहे थे, देख ही नहीं पा रहे तो बंदी कहां से बनाएंगे, कैसे पकड़ेंगे, कैसे छुएंगे कृष्ण को। लेकिन कौन देख रहे थे, भीष्म द्रोण है ना, ये लोग देख रहे थे और भगवान की स्तुति कर रहे थे। और धृतराष्ट्र ने प्रार्थना की, हरि बोल, धृतराष्ट्र ने प्रार्थना की कि मुझे भी अपना दर्शन कराइए। धवल वर्ण मतलब सफेद वर्ण, धवल वर्ण और हजार मुख वाले शेष नाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। वो जो तेज था वो शेष नाग का था, तो शेष नाग को देखा। हे राजन, उन शेष नाग की गोद में महान आलोकमय तथा लोक वंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ। शेष जी की गोद में रखा हुआ है गोलोक धाम, जहां देवताओं के ईश्वर तथा गणनाशीलों में प्रधान काल का भी कोई बस नहीं चलता। तत्स्योत्संगे महालोको गोलोको लोके वंदिता यत्र कालः कलयताम ईश्वरो धाम मानिनाम। काल का बस नहीं चलता, गीता में भगवान कहते हैं कालः कलयताम अस्मि, गणना करने वालों में काल हूं। काल सबकी गणना कर लेता है, सबकी गिनती कर लेता है, एक एक करके सबको मार करके सबकी गिनती करता है काल। इसलिए भगवान कहते हैं कालः कलयताम अहम्, गिनती करने वालों में काल, काल सबकी गिनती कर लेता है एक एक करके, सबको मार करके गिनती करता है, ऐसे एक दो तीन चार सबको मारता है और गिनती करता है काल। तो गिनती करने वालों में काल में हूं, वहां पर काल का कोई बस नहीं है। वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन चित्त बुद्धि अहंकार 16 विकार तथा महातत्व भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। वहां कामदेव के समान मनोहर रूप लावण्य शालिनी श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा, मतलब पार्षद का स्त्रीलिंग पार्षदा है, कृष्ण की पार्षदा यानी स्त्रियां हैं, द्वारपाल का कार्य करती थी। उस गोलोक धाम के जो द्वारपाल हैं वो पुरुष नहीं है, स्त्रियां हैं। श्याम सुंदर विग्रह, देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उद्यत देख उन्होंने मना किया, रोक दिया। देवता लोग जब द्वार के भीतर जा रहे हैं तो वो जो द्वारपालिकाएं हैं उन्होंने रोक दिया, ये भी नहीं जा सकते, रोक दिया। तत्र कंदर्ब लावण्यां श्याम सुंदर विग्रह द्वारि गंतुम चाभिदता यसे धन कृष्ण पार्षदां। नारद जी कहते हैं देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने जो श्री कृष्ण की तब देवता बोले हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यहां आए हैं। अपना परिचय दिया। लोकपाल अवयम सर्वे ब्रह्म विष्णु महेश्वरा श्री कृष्ण दर्शनार्थाय
सक्राद्य आगता इह। श्री नारद जी कहते हैं देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने जो श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थी अंतःपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी जो सत चंद्राना नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और हाथ में बैंत की छड़ी लिए थी, बाहर आई और उनसे उनका अभिष्ट प्रयोजन पूछा कि क्या काम है आपको। अंदर से आए और पूछा कि आपको क्या काम है। सत चंद्राना बोली, यहां पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के निवासी हैं। वो पूछ रहे कौन से ब्रह्मांड से आए हो आप लोग, ये शीघ्र बताइए, तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी कि आप कौन से ब्रह्मांड से आए हैं आप लोग। कश्यान्नस्याधिपा देवा यूयम सर्वे समागता वदता सो गमिष्यामी तस्मै भगवते ह्यहम्। देवताओं ने कहा अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्या अन्य अन्य ब्रह्मांड भी हैं? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। हे सुभे, हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। अहो अंडा नितान्यानि नास्माभिर दर्शितानि चां एकमंडम प्रजानीमो थोपरम नास्ति नहा सुभे। सत्यन्द्राणा ना बोली ब्रह्मदेव, ब्रह्म जी को बड़ा हंसी उड़ा रही है, कहती ब्रह्मदेव यहां तो विरजा नदी में ही करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं, उनमें से आप जैसे ही पृथक पृथक देवता निवास करते हैं, यहां भी करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं और कारण समझ में अलग है, लेकिन यहां ही करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, आप जैसे सब ब्रह्मांडों में देवता हैं। अरे क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते हैं? जान पड़ता है, कभी यहां आए नहीं है, अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं, घर से बाहर निकले नहीं। नाम ग्रामम न जानी थे कदा नात्र समागता जड़ बुद्धा प्रहर्षद्वे गृहान्नापि विनिर्गता। जैसे गूलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते, गूलर के फल के अंदर होते हैं, गूलर का फल चारों तरफ से बंद रहता है और जब आप तोड़ते हो तो बहुत कीड़े निकलते हैं उसमें, ऐसे आप लोग उस एक ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले कीड़े हो। आपको पता नहीं इतनी बड़ी दुनिया, पता ही नहीं कीड़े फल के बाहर कितनी बड़ी दुनिया है। उसी प्रकार आम जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं उसी एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। ब्रह्मांड में कम जानन्ति यत्र जाता तथा जनाम मस्का चैथान तस्था औदुम्बर फले सुवै। नारद जी कहते हैं हे राजन, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, बड़ी हंसी हो रही है इसलिए सब हक्का बक्का खड़े हैं, कुछ बोल नहीं सके। उन्हें चकित से देखकर भगवान विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु हैं एकमात्र वहां समझदार जो बोल सकते हैं कुछ है? आप कौन से ब्रह्मांड से हैं, क्या बोले, वो सब हक्का बक्का खड़े हैं एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, तो भगवान विष्णु जानते हैं ना, वो सब जानते हैं। तो वो बोले, श्री विष्णु बोले, जिस ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण गर्भ का सनातन अवतार हुआ है और त्रिविक्रम के नक्श से जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया है, यानी वामन देव का अवतार हुआ, तो वो छेद हो गया है जिस ब्रह्मांड में, वहीं हम निवास करते हैं। तो बताया सही परिचय दिया, जिस ब्रह्मांड में कृष्ण गर्भ का अवतार हुआ, फिर वामन का अवतार हुआ और छेद हो गया है जिस ब्रह्मांड में, उनके नाखून से उस ब्रह्मांड से हम आए हैं, तो सही जवाब दिया। यस्मिन् नन्दे प्रश्न गर्भो वतारो भूत सनातना त्रिविक्रम नखोन भिन्ने तस्मिन् नन्दे स्थिता वयम्। श्री नारद जी कहते हैं भगवान विष्णु की ये बात सुनकर सत्चंद्राना ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई कि इतने लोगों में एक ही आदमी बुद्धिमान है जिसने कुछ बताया है, बाकी सब मूर्ख के मूर्ख हैं। फिर शीघ्र ही आई और सबको अंतःपुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई। तदनंतर संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया, वहां गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय वसंत का उत्सव मनाने वाले गोपियों और गौओं के समूह से घिरा था, कल्प वृक्षों तथा कल्प लताओं के समुदाय से सुशोभित था और रास मंडल उसे मंडित कर रहा था। वहां श्याम बनने वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही है। तट पर बने हुए करोड़ों महल उसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा उस नदी में उतरने के लिए वैदूर्य मणि की सुंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं। वहां दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। वहां के भांति भांति के विचित्र पक्षियों, भ्रमरों तथा बंसी बट के कारण वहां की सुषमा और भी बढ़ रही है। यत्र कृष्णा नदी श्यामां तोलिका कोटि मंडिताम वैदूर्य कृत सोपाना स्वच्छंद गतिरुत्तमां वृंदावनम भ्राजमानम दिव्य द्रुमलता कुलम चित्र पक्षी मधुब्रातेर बंसी बटे विराजितम पुलिने शीतले वायुर मंदगामी वहत्यलम सहस्र दल पद्मानाम रजो विक्षेपयन मुहु मध्ये निज निकुंजोस्ति द्वात्रिंसन्वन संयुता प्राकार परिखा युक्तो ऋणाक्षय विटा जिरा सप्तधा पद्मरागाग्राम जिरकुड्य विभूषिता कोटिंदु मंडलाकारे वितने गुलिका द्युति। वहां हजार दल के कमल सुगंधित पराग को चारों ओर पुनः बिखेरते हुए शीतल वायु मंद गति से बहती रहती है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। चार दीवारियां और खाइयां उसे सुशोभित कर रही हैं। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय बटों से अलंकृत है। पद्मराग आदि 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें, वो दीवारें जो हैं इससे पत्थर की बनी नहीं है या ईंटे की बनी नहीं है, किससे बनी है? पद्मराग आदि 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें, 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन के पत्थर बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चंदोबे उसे अलंकृत करते हैं तथा उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। फहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों एवं मार्गों की शोभा बढ़ाते हैं। वहां भ्रमरों के गुंजारव संगीत की सृष्टि करते हैं तथा मत्त मयूरों और कोकिलों के कलरव सदा श्रवण गोचर होते हैं। वहां बाल सूर्य के समान कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली ललनाएं सैकड़ों चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण से उद्भासित होती हैं। स्वच्छंद गति से चलती हुई वे सुंदरियां मणिमय दीवालों में अपना मनोहर मुख देखती हुई वहां के रत्न जटित आंगनों में भागती फिरती हैं। उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभा देते हैं। नूपुरों तथा करधने की मधुर झनकार वहां सदा गूंजती रहती है। वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती हैं। पतत पता के दिव्याभय पुष्प मंदिर वर्त भी जाते भ्रमर संगीतो मत्य पर ही पिकत सुना बालार के कुंडल धरा सतचंद्र प्रभा स्त्रिया स्वच्छन्न गतियो रत्न पश्यन्तः सुंदरं मुखं रत्नाजरे सुधावन्त्यो हायक हारकेयूर भूषितां कुणन्नूपुर किंकिण्यस् चूड़ामणि विराजितां कोटिशः कोटिशो गावो द्वारि द्वारि मनोहरा श्वेत पर्वत संकाशा दिव्य भूषण भूषितां पयश्यन्यस् तरुण्यश्च शीलरूप गुणैर्युतां सवत्सा पीत पुच्छाश्चा ब्रजंत्यो भव्य मूर्तिकां। वहां द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं। वे गौएं दिव्य आभूषणों से विभूषित होने से सफेद पहाड़ के समान प्रतीत होती हैं। सबके सब दूध देने वाली तथा नई अवस्था की हैं। वे सुशीला सुरुचा तथा सद्गुणवती हैं। सभी वशणों के सहित पीली पूंछ वाली हैं। ऐसी भव्य रूप वाली गौएं वहां सब ओर विचर रही हैं। उनके घंटों तथा मंजीरों से मधुर ध्वनि होती रहती है। किनकिनी जालों से विभूषित उन गौओं के सींगों में सोना मढ़ा रहता है। वे सोने के तुल्य हार एवं मालाएं धारण करती हैं। उनके अंगों से प्रभा छिटकती रहती है। सभी गौएं भिन्न भिन्न रंग वाली हैं। कोई उजली, कोई काली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग की और कोई चितकबरे रंग की हैं। किन्हीं किन्हीं का वर्ण धुएं जैसा है। बहुत सी कोयल के समान काली हैं, दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली हैं, दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली, उन गायों के शरीर पर तरुणियों के हाथ के चिन्ह शोभित हैं, अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए हुए हैं, हिरण के समान छलांग भरने वाले बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ जाती है। घंटा मंजीर संरावा किंकनी जाल मंडिता हेम श्रृंगो हेम तुल्य हारा हार माला स्फुरत प्रभा पाटला हरिता ताम्रा पीता श्यामा विचित्रिता धूम्रा कोकिल वर्णाश्च यत्र गावस्त्वनेकधा समुद्रवत दुग्धदाश्च तरुणी कर चिन्हिता कुरंगवन विलंघन भीर गोवत्सैर मंडिता शुभा यतस्ततस्लंतश्च गोगणेशु महावृषा दीर्घ कंधर श्रृंगाढ़ यत्र धर्मे धुरंधरा गोपाला वेत्र हस्ताश्च श्यामा वंशीधरा परा कृष्ण लीलां प्रगायन्तो रागैर मदने मोहने इत्थं निज निकुंजं तं नत्वा मध्ये गता सुरा ज्योतिषां मंडलं पद्मं सहस्रे दल शोभितं तदूर्ध्वं षोडश दलं ततोष्ट दल पंकजं तस्योपरि स्फुरत दीर्घं सोपानत्रय मंडितं। गायों में झुंड, गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं, उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग हैं, उन सांडों को साक्षात सांडों को सांड समझते हैं, बड़े बैल, उन सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। गवों की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं, उनमें से कुछ तो हाथ में बैत की छड़ी लिए हुए हैं और दूसरों के हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सबके शरीर का रंग श्याम है, वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। उस दिव्य निज निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। सब देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर गए। अब और भीतर क्या देखते हैं, ये तो सब रास्ते में देखा है, ये सब रास्ता है। अब भीतर गए, वहां उन्हें हजार दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। उसके अंदर हजार दल वाला एक कमल दिखाई पड़ा, वह ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है, हजार दल के कमल के ऊपर 16 दल का कमल है और उसके ऊपर 8 दल वाला कमल है, समझ रहे हैं, हजार दल के कमल के ऊपर 16 दल का कमल, उसके ऊपर 8 दल का कमल है, उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है, तीन सीढ़ियां हैं उसमें, उस सिंहासन में तीन सीढ़ियां हैं, मतलब देखो कितना विवरण है गोलोक धाम का, मतलब क्या कोई ऐसी कल्पना कर सकता है, इतना विवरण, तीन सीढ़ियों से संपन्न वह परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पाता है। वो सीढ़ियां कौस्तुभ मणि की बनी है, सोचो कृष्ण के सिंहासन की सीढ़ियां कौस्तुभ मणि से बनी है, जबकि एक विष्णु के पास ही कौस्तुभ मणि है और किसी के पास नहीं है। वैकुंठ धाम में जितने भी निवासी हैं सब विष्णु जैसे हैं, विष्णु की एक विशेषता है कि उनके गले में कौस्तुभ मणि है, लेकिन कृष्ण के सिंहासन की सीढ़ियां ही बनी है कौस्तुभ मणि की। सोचो क्या ऐश्वर्य है कृष्ण का, कृष्ण के ऐश्वर्य की आप बात सोचो कि क्या ऐश्वर्य है, उनके सिंहासन की जो तीन सीढ़ियां हैं वो पूरी कौस्तुभ मणि से बनी हुई हैं। उसी पर भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री राधिका जी के साथ विराजमान है, ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से समन्वित तथा श्रीदामा आदि 8 गोपालों के द्वारा सेवित हैं। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग के पंखे झले जा रहे हैं और हीरों से बनी मूठ वाले चमर डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत हैं जो करोड़ों चंद्रमा की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। एक चंद्रमा तो क्या है, कुछ नहीं है, करोड़ों चंद्रमा जैसे छत्र हैं वहां पर। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित श्री राधिका जी से उनकी बाएं भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छा पूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है, वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं, उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रुकुटी विलास से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्री हरि की मेघ के समान श्यामल कांति है, कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं, घुटनों तक लंबी बड़ी भुजाओं वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं, जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मतवाले भ्रमरों की गुंजार हो रही है। वे पैरों में घुंघरू और हाथों में कंकण की छटा छिटका रहे हैं, अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्रीवत्स का चिन्ह बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से उन परम पुरुष श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम किया। सिंहासनम परम दिव्यम कौस्तुभय खचितम शुभय ददृशुर देवता सर्वा श्री कृष्णम राधयायुतम दिव्य रष्ट सखी संघैर मोहिन्यादिभिरन्वितम श्री दामाद्य सेव्यमानम अष्ट गोपाल सेवितय हंसाभैर व्यजनांदोल चामरैर वज्र मुष्टिभिः कोटिचंद्र प्रतीकाशय सेवितम छत्र कोटिभिः श्री राधिका अलंकृत वाम बाहुं स्वच्छंद वक्रीकृत दक्षिणांघ्रिं वंशीधरम सुंदर मंदहासम भ्रूमंडला मोहित कामराशिम घन प्रभम पद्म दलायते क्षण प्रलंब बाहुं बहु पीत वाससम वृंदावन वृंदावनोन मत्त मिलिंद समदैर विराजितम श्रीवन मालया हरिम कांची कला कंकण नूपुर द्युतिम लसन मनोहारि महो ज्वलस्मितम श्रीवत्स रत्नोत्तम कुंतल स्त्रियम किरीट हारांगद कुंडलत्विसम दृष्ट्वात्मानंद समुद्र मग्नवन प्रहर्षिताश्चाश्रु कला कुलेक्षणा तथा सुरा प्राञ्जलयो नताना ने मुर्मुरारिम पुरुषम परायणम इति श्रीमद् गर्ग संहितायाम गोलोक खंडे नारद बहुलाश संवादे श्री गोलोक धाम वर्णनम नाम द्वितीय अध्याय। ये दूसरा अध्याय गोलोक धाम का वर्णन है। इसके बाद सुनिए क्या घटना हुई। राजा बहुलाश ने पूछा, हे मुनि, परात्पर महात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन पाकर संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया, मुझे ये बताने की कृपा करें। सिनारी जी कहते हैं, राजन, उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि उठे। सुनो ध्यान से, अब क्या हुआ, आठ भुजाओं वाले जो वैकुंठ के विष्णु हैं उठे और क्या किया, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में लीन हो गए। आठ भुजाओं वाले जो विष्णु हैं साक्षात कृष्ण के विग्रह में लीन हो गए। सर्वेषां पश्यतां तेषां वैकुंठोपि हरिस्ततः उत्थायाश्च भुजाः साक्षान् लीनोऽभूत् कृष्ण विग्रहे। उसी समय करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान नरसिंह जी पधारे। कौन? नरसिंह भगवान करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, और भगवान श्री कृष्ण के तेज में वे भी समा गए। तदेव चागतः पूर्णो नृसिंहश्चण्ड विक्रमः कोटि सूर्य प्रतीकाशो लीनोभूत कृष्ण तेजसी। इसके बाद हजार भुजाओं से सुशोभित श्वेत द्वीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके सफेद रथ में सफेद रंग के 1,00,000 घोड़े जोते हुए थे। हजार भुजाओं वाले जो विष्णु हैं, जिनके सफेद रथ में 1,00,000 सफेद घोड़े जोते हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर वहां आए। उनके साथ श्री लक्ष्मी जी भी थीं, अनेक प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षद चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान भी उसी समय श्री कृष्ण के श्री विग्रह में सहसा प्रविष्ट हो गए। रथे लक्ष्य हये शुभ्रे इस रश्चागतवान ततः श्वेत दीपाधिपतो श्वेत दीपाधिपो भूमा सहस्र भुज मंडिता श्रियायुक्ता स्वायुधाढ्यः पार्षद परिसेविता संप्रलीनो बभुवाशो सोपि श्री कृष्ण विग्रहे। फिर पूर्ण स्वरूप कमलोचन भगवान श्री राम स्वयं वहां पधारे। अब कौन आए? श्री राम। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा साथ में श्री सीता जी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उस पर निरंतर चमर डुलाए जा रहे थे। असंख्य बानर युद्धपति उनकी रक्षा के कार्य में संलग्न थे। बानरों के युद्धपति रक्षा कर रहे थे। उस रथ के 1,00,000 चक्कों से मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। 1,00,000 पहिए हैं उस रथ के। उस पर 1,00,000 ध्वजाएं फहरा रही थीं। उस रथ में 1,00,000 घोड़े जुटे हुए थे। वो रथ सोने का बना था। उसी पर बैठकर भगवान श्री राम वहां पधारे थे। वे भी श्री कृष्णचंद्र के दिव्य विग्रह में लीन हो गए। सोचो। तदेव चागतः साक्षान् रामो राजीव लोचनः धनुर्बाण धरा सीता शोभितो भ्रातृभिर्वृतः 10 कोट्यर्क संकासे चामरे दोलिते रथे असंख्यवान रेन्द्राढ्ये लक्ष चक्र घनस्वने लक्ष ध्वजे लक्ष हये 7 कौंभे स्थित ततः श्री कृष्ण विग्रहे पूर्णः संप्रलीनो बभूवः। फिर उसी समय अब कौन आया? साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि पधारे, जो प्रलय काल की अग्नि शिखा के समान उद्भासित हो रहे थे। प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी थे। देवेश्वर यज्ञ अपनी धर्म पत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्मय रथ पर बैठे दिखाई देते थे। वे भी उस समय श्याम विग्रह भगवान श्री कृष्णचंद्र में लीन हो गए। तदेव चागत साक्षात यज्ञो नारायणो हरि तस्फुरत प्रलयाटोप ज्वलत अग्नि शिखोपम रथे ज्योतिर्मये दृश्यो दक्षिणाढ्या सुरेश्वर स्वपिलीनो बभूवासु श्री कृष्ण श्याम विग्रहे। तो आप लोगों से क्षमा मांग रहा हूं, समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन थोड़ा और आप वर्णन सुनिए कृष्ण की जो महिमा है। तत्पश्चात साक्षात भगवान नर नारायण वहां पधारे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम थी। उनके 4 भुजाएं थीं, नेत्र विशाल थे और वे मुनि के वेश में थे। कौन आया? साक्षात नर नारायण मुनि के वेश में। उनके सिर का जटाजूट बिजली करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तमान जटाजूट। उनका दीप्ति मंडल सब और उद्भासित हो रहा था। दिव्य मुनियों से मंडित वे भगवान नारायण अपने अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पा रहे थे। हे राजन, सभी देवता आश्चर्य युक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे कि क्या हो रहा है, किंतु वे भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में तत्काल लीन हो गए। तदा चागतवान साक्षान नर नारायण प्रभु चतुर्भुजो विशालाक्षो मुनि बेसो घन द्युति तदित कोटि जटाजूट प्रस्फुर दीप्ति मंडल मुनिंद्र मंडल दिव्यर मंडितो खंडित व्रत सर्वेशां पश्यताम तेसाम आश्चर्य मनसान पर स्वपिलीनो बभूवासु श्री कृष्ण श्याम सुंदरे। इस प्रकार के विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। आपको आश्चर्य हो रहा है? सब देवता तो आश्चर्य कर रहे हैं। उन सबको यह भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्णचंद्र स्वयं परिपूर्णतम भगवान है। तब उन परम प्रभु की स्तुति करने लगे। परिपूर्णतमं साक्षां श्री कृष्णं च स्वयं प्रभुं ज्ञात्वा देवास्तुतिं चक्रो परम विस्मयमागतः। अब देवता स्तुति कर रहे हैं। कृष्णाय पूर्ण पुरुषाय परात्पराय यज्ञेश्वराय पर कारण कारणाय राधा वराय परिपूर्ण तमाय साक्षां गोलोक धाम धिषणाय नमः परस्मे योगेश्वरा किल वदन्ति महापरम त्वं तत्रैव सात्वतमना कृत विग्रहं च अस्माभिरद्य विदितं यदो द्वयं ते तस्मै नमोस्तु महतां पतये परस्मे व्यंगेन वाना न हि लक्षण या कदापि स्फोटेन यच्च कवयो न विशन्ति मुख्यां निर्देश्य भावरहितं प्रकृते परं च त्वां ब्रह्म निर्गुणमलं शरणं व्रजामः। त्वां ब्रह्म केचिद्वयन्ति परे च कालम् केचित् प्रशान्तिमपरे भुविकर्म रूपम् पूर्वे च योगमपरे किल कर्तृभावम् अन्योक्तिभिर्न विदितम् शरणम् गतास्मः श्रेयस्करीम् भगवत तव पादसेवाम् हित्वाथ तीर्थयजनादि तपश्चरन्ति ज्ञानेन ये च विदिता बहुविघ्नसङ्घम् संताडिता किम भवन्ति न ते कृतार्था विज्ञाप्य मद्य किमु देव अशेष साक्षी यः सर्वभूत हृदयेषु विराजमान देवेर्न मद्भिरमला शयमुक्त देह तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो राधिका हृदय सुंदर चंद्रहारा श्री गोपिका नयन जीवन मूलहारा गोलोक धाम धिषण ध्वज आदि देवा स्वतम विपत्सु विबुधान परिपाहि पाहि वृंदावनेश गिरिराज पते ब्रजेश गोपाल वेश कृत नित्य विहार लीला राधा पते श्रुतिधराधिपते धराम तम गोवर्धनोद्धरण उद्धर धर्म धाराम। देवता बोले जो भगवान श्री कृष्णचंद्र पूर्ण पुरुष पर से भी पर यज्ञों के स्वामी कारण के भी परम कारण परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के अधिवासी हैं उन परम पुरुष श्री राधावर को हम सादर नमस्कार करते हैं। योगेश्वर लोग कहते हैं कि आप परम तेजापुंज हैं, शुद्ध अंतःकरण वाले भक्तजन ऐसा मानते हैं कि आप लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारी पुरुष हैं, परंतु हम लोगों ने आज आपके जिस स्वरूप को जाना है वह अद्वैत सबसे अभिन्न एक तथा अद्वितीय है, अतः आप महत्तम तत्व एवं महात्माओं के भी अधिपति हैं, आप परम ब्रह्म परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। कितने विद्वानों ने व्यंजना लक्षणा और स्फोट द्वारा आपको जानना चाहा, किंतु फिर भी वे आपको पहचान नहीं सके, क्योंकि आप निर्दिष्ट भाव से रहते हैं अतः माया से निर्लेप आप निर्गुण ब्रह्म की हम शरण ग्रहण करते हैं। किन्हीं ने आपको ब्रह्म माना है, कुछ दूसरे लोग आपको काल कहते हैं, कितनों की धारणा है कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप हैं, तथा कतिपय मीमांसक लोगों ने ये माना है कि पृथ्वी पर आप कर्म रूप से विराजमान हैं, कुछ प्राचीनों ने योग नाम से कुछ ने कर्ता रूप में आपको स्वीकार किया है। इस प्रकार सबकी परस्पर विभिन्न उक्तियां हैं, अतः कोई भी आपको वस्तुतः नहीं जान सका, अतः आप भगवान की हमने शरण ग्रहण की है। हे भगवान, आपके श्री चरणों की सेवा अनेक कल्याणों को देने वाली है, जो उसे छोड़कर तीर्थ यज्ञ और तप का आचरण करते हैं अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं उन्हें बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है, वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हे भगवान, अब हम आपसे क्या निवेदन करें, आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान हैं, जो शुद्ध अंतःकरण वाले एवं देह बंधन से मुक्त हैं, देवता भी आपको नमस्कार करते हैं, ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है, जो श्री राधिका जी के हृदय को सुशोभित करने वाले चंद्रहार हैं, जो गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार हैं, तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत कर रहे हैं, वे आदिदेव भगवान आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा करें। हे भगवान, आप वृंदावन के स्वामी हैं, गिरिराजपति भी कहलाते हैं, आप ब्रज के अधिनायक हैं, गोपाल के रूप में अवतार धारण करके आप अनेक प्रकार की नित्य विहार लीलाएं करते हैं, श्री राधिका जी के प्राण वल्लभ एवं श्रुतिधरों के भी आप स्वामी हैं, आप ही गोवर्धन धारी हैं, अब आप धर्म के भार को धारण करने वाली इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करें। तो बहुत आगे भी कृष्ण की महिमा थोड़ा सा एक दिग्दर्शन कराया हमने, श्री चैतन्य चरितामृत की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।